श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 बोर्ड पर लिखा हुआ है, कृपा करके आप लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलने का प्रयास कीजिए। दस्यों पुरा षट् न विजित्य लुम्पतः मन्यते एके स्व जिता दिश दशः जित आत्मनः यस्य समस्य देहिनां साधो समूह प्रभवा उत परे दस्यं पुरा षट् न व्यजेत्य लोम्पतो मन्यन्ते के सजिता दिशो दशः जीतात्मनो यस्य समस्य देहिनां साधो समोह प्रभवा कुतः परे तत् अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। दस्यों लुटेरे पूरा प्रारंभ में सात छह नौ नहीं विजित्या जीतकर लुम्पतः किसी की सारी संपत्ति चुराते हुए मन्यन्ते मानते हैं एके कुछ स्वजिता जीता हुआ दिश दशः दसो दिशाएं जित आत्मनः जिसने इंद्रियों को जीत लिया है इंद्रिय जीत यस्य विद्वान का समस्या समदर्शी देहिनां समस्त जीवों के प्रति साधो ऐसे साधु पुरुष का स्वमोह प्रभवा अपने ही मोह से उत्पन्न कुतः कहां परे शत्रु या विरोधी तत्व। अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन छह शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। ए मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं कि मैंने तो दसों दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु यदि कोई व्यक्ति इन छह शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीवों पर समभाव रखता है तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। कृपा करके इस अनुवाद को दोहराइए। प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं जिन्होंने उन छह शत्रुओं को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। ये मूढ़ यह सोचकर गर्वित होते हैं मैंने तो दसों दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु यदि कोई व्यक्ति इन छह शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीवों पर समभाव रखता है तो उसके लिए शत्रु नहीं होते। शत्रु की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। हरे कृष्णा। जैसे इस कथा को हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं कि इस अध्याय के अंदर सारे सौंड और अमर्ग के पढ़ाए हुए विद्या को छोड़ते हुए प्रहलाद जी के सार गर्भित उपदेश को किस प्रकार से उनके दोस्तों ने स्वीकार किया, उसका दिग्दर्शन इस अध्याय के अंदर कराया जा रहा है। पहले श्लोक में नारद जी कहते हैं कि सर्ण और अवर्ग के उपदेशों को निसार समझते हुए उनके दोस्तों ने उनके उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है, अच्छे स्वाद मिल जाता है, तो कड़वी स्वाद को हम लोग भूल जाते हैं। यह जीव का स्वरूपगत धर्म है। तो प्रहलाद जी ने ऐसे सबल ज्ञान दिया अपने दोस्तों को, जिसके आधार पर वो उस भौतिक विद्या को ग्रहण करने की भावना को छोड़ दिए। हम लोग पढ़े हैं इससे पिछले वाले श्लोकों में, किस दो श्लोक में प्रहलाद जी के व्यवहार को देख करके, उनके वाक्यों को सुन करके हिरण्यकश्यपु बहुत ही कठोर शब्दों में प्रहलाद को दुत्कारा है। लेकिन प्रहलाद जी भक्ति के थर्मामीटर कहे जाते हैं। कितना भी आक्रोश उनके पिता ने दिखाया, लेकिन उस आक्रोश को अपने हृदय में इतनी गंभीरता और शांति के साथ उन्होंने लिया, तो उतावले होकर के नहीं बोल रहे। दो श्लोक में हिरण्यकश्यपु ने डांटा और प्रहलाद जी उनको समझाने के लिए चार श्लोक बोले। श्लोक नंबर 6 में हिरण्यकश्यपु कहता है, तू जानता नहीं है जब मैं क्रोध करता हूं तो अपने लोकपाल सहित और लोकपाल सारे के सारे कांपते हैं, और मैं देखता हूं कि तू अभीत मेरे सामने निर्वीक होकर के तू बैठा है और बोलते जा रहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू किसके बल पर ऐसा कर रहा है। प्रहलाद जी ने उत्तर देते हुए तीन श्लोकों में, इससे पहले वाले तीन श्लोकों में प्रहलाद जी कह चुके हैं कि जिसके बल पर आप इतनी बड़ी बड़ी डिंग हाँक रहे हो, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। प्रहलाद जी कहते हैं कि जिसके बलबूते पर आप इतने अहंकार भरी वाक्यों को बोलते हो, मुझे डांटते हो, वही बल जिसने बल आपको दिया, जिसके बल पर तुम सारे देवताओं को कपाते हो, कंपन करने की भावना उनके अंदर उत्पन्न कर देते हो, वही बल देने वाला मेरे भी भीतर है, वही मुझे बल दे रहा है, इसलिए अभीत होकर के मैं आपके समक्ष बोलते जा रहा हूं। इतनी अटूट विश्वास एक शुद्ध भक्त को ही भगवान के ऊपर होता है। इसलिए भक्ति का थर्मामीटर साधु लोग बताते हैं कि प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी के हृदय की भावना से एक शुद्ध भक्त अपने हृदय की भक्ति को मापता है, कितनी उनकी अटूट विश्वास है। अब कल के श्लोकों में जैसे आया था कि हे प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्यकश्यपु को कि हे जय असुर, इसका एक अर्थ है बहुत बलशाली, अब आप इस आसुरी भाव को छोड़िए, बताइए जो डांट रहा है क्रोध में है उसके समक्ष प्रहलाद महाराज निर्भीक होकर कहते हैं कि हे पिताश्री, इस आप आसुरी भाव को छोड़ दीजिए। जय असुरम भाव इमं तुमात्मना, आप अपने इस असुर भाव को छोड़ दीजिए। इतना बल हिरण्यकश्यपु को नहीं मिला जितना बल प्रभुपाद जी, अरे प्रहलाद जी के पास है। ऐसे निर्भीक होकर के बोल रहे हैं कि छोड़ दो, क्यों बेकार की गुस्सा कर रहे हो। और कारण भी बताते हैं कि केवल आप मान लिए हो, मन के हारे हार है मन को जीते जीत, आपने ऐसे अपने मन में ठान लिया है कि मैं इस पूरे संसार में मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई दिग विजयी नहीं है, इसलिए इस घमंड भरी वाक्यों को आप मेरे समक्ष प्रकट कर रहे हो। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि नहीं, आप इस भाव को छोड़िए। क्यों? कि जो अजितात्मन लोग होते हैं, जिनकी इंद्रियां गुलाम रूपी जंजीरों से बंधी हुई हैं, वही व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं दिग्विजयी हो चुका हूं, लेकिन अपने हृदय की कमजोरी उसको पता नहीं। सबसे हर व्यक्ति के हृदय की कमजोरी यह है कि अपने मन को इतना कमजोर बना लिया है, और मन इस शरीर रूपी पूरी का राजा कहा जाता है, इस शरीर को पूरी कहा गया है भागवतम के अंदर, और इस राजधानी का मालिक मन को कहा गया है। लेकिन जिस राजधानी का मालिक ही कमजोर हो तो इस राजधानी के राज्य को कैसे संभाल पाएगा? जिसका मन कमजोर है, जिसने अपने मन को नहीं जीत पाया है, अपने मन को वश में नहीं कर पाया है, वो कैसे दसों दिशाओं को जीत लेगा? अब जो कमजोरियां हैं, जो छह दुश्मन हम लोगों के सबके हृदय में हैं, उनका प्रस्तुति करते हुए प्रहलाद जी यहां कहते हैं आज के श्लोक में कि छह चोर हैं, दस्युन पुरा सट। पुरा का अर्थ इस पुरी में, इस देह में छह चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। प्रहलाद जी, अरे प्रभुपाद जी अनुवाद के अंदर लिखते हैं कि जो इस पूरे शरीर को चुरा ले जाते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए, ये छह चोर उस शरीर को वहां ले जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए इन चोरों से बचने के लिए जो इस पूरी का राजा है उसको हमें बलवान बनाना चाहिए। भगवद गीता के छठे अध्याय के अंदर 5, 6, 7 श्लोक में वर्णन किए हैं, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया है वह मुझे प्राप्त कर लिया है। स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है वह मुझे आसानी से प्राप्त कर लिया है। उसमें अब कोई संदेह नहीं है। और जिसका मन ही अपने बस में नहीं है वह कैसे भगवान को प्राप्त कर पाएगा। यहां हिरण्यकश्यपु के हृदय की भाव को मापते हुए प्रहलाद जी कहते हैं कि मन्यंत एके, आपने ऐसे अपने मनोधारणा बना लिया है कि मैं ही एके अकेला हूं, मैंने सब कुछ अपने बस में कर लिया है। लेकिन यह आपको पता नहीं है हे पिताश्री कि आपके हृदय के अंदर ही, आपके शरीर के अंदर ही छह चोर हैं जिसने आपके शरीर को छुरा लिया। प्रहलाद जी का कहने का अर्थ यह है कि आप जिस अहंकार में अपने को एक ही मान रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं और तुम मेरा बात नहीं मानता इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा, तो छह चोरों ने आपके इस शरीर को चुरा लिया है। प्रहलाद का कहने का अर्थ यह था कि पिताजी अब आपका अंत आने वाला है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो निश्चित रूप से जो एक ही मान रहे हो अपने शरीर को, मन्यते ऐसा मान रहे हो कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं जो कहूं वही हो, तो अब आपका अंत आ चुका है। स्वजितो दिशो दशा, आपने ऐसा झूठा हृदय में भाव मान बना लिया है कि मैं दसों दिशाओं को जीत लिया हूं और तू एक छोटा सा बालक। वास्तव में अगर यह देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत हिरण्यकश्यपु को मन ग्लानी हो रही है कि बताओ मैं सबको बस में कर लिया और लेकिन खुद का जो मेरा बेटा है छोटा सा वही मेरे बस में नहीं है। तो अन्य लोग आक्षेप कर सकते हैं कि तू क्या हमको बस में करेगा, तू अपने घर को तो पहले देखो, अपने बच्चे को तो संभालो। इस भाव से उसके अंदर और क्रोध का आक्रोश आया। यह भाव था कि मैं दसों दिशाओं को जीत लिया हूं, अरे मेरे सामने अभी तक बिना डर का बात कर रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति अभय प्रदान करती है। प्रभुपाद जी कितना निडर होकर के कई बार जिसके घर में रहते थे, जिनके देश में गए थे प्रचार के लिए, क्या क्या शब्द उन्होंने नहीं कहा, कड़ी कड़ी से कड़ी वाक्यों को उन्होंने अपने शब्दों से व्यक्त किया, क्योंकि उनको यह पता था कि मैं भगवान के बातों को हम यहां देने आया हूं, भगवान को देने आया हूं। प्रभुपाद जी को प्रहलाद जी की तरह एक निष्ठ विश्वास थे, इसलिए वो अभय की तरह बात करते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका नाम भी वैसे ही दिया, अभय चरणारविंद। अगर इस प्रकार की एक निष्ठता केवल एक शुद्ध भक्त होता है वही उसके अंदर इस प्रकार का भाव आता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि आप अजितात्मन हो। यहां जितात्मन शब्द के पीछे वह शब्द छिपा हुआ है कि आप अपने को अकेला मान रहे हो, अपने को सब कुछ मान रहे हो, आपकी इंद्रियां अभी अजीत है, आप इन इंद्रियों को आपने जीता नहीं है, इसलिए यह अजितात्मन की जो भावना है यह आपके शरीर को विनष्ट कर सकता है देह नाम। लेकिन साधु का स्वभाव क्या है नीचे वाले लाइन में बता रहे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की भावना से ऊपर उठ चुके हैं, जो साधु स्वभाव वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने को जितात्मन बना लिया है, अपने मन को जीत लिया है, अपने इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए कोई भी शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। भागवत के अंदर आया है युधिष्ठिर महाराज के लिए अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं था। और यह सबका अपना अपना अनुभव होगा कि वास्तव में कोई अपने से कुछ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति कितना भी दूर है, लेकिन उसके विषय में सोच सोच करके अपना मन कितना उन्दोलित होता है, यह सबका अनुभव होगा कि इसने मेरे प्रति ऐसा कहा, वो कहाँ है लेकिन हम कहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं। अपने मन से उसे इतना दुश्मनागत ठान लिए हैं कि वो दूर स्थित है, लेकिन हम यहाँ दूर होते हुए भी कूड़ते रहते हैं, अपने मन में उसके विषय में सोचते रहते हैं। मन से हम दुश्मन बना लिए और मन में ठान लिया कि ये हमारा दुश्मन है। इसलिए प्रहलाद जी यहाँ यह कहते हैं अपने पिताजी से कि अपने मन को उस स्थिति से नीचे लाइए, समता की स्थिति में। कोई व्यक्ति अगर इस स्थिति में पहुंच अपने को पहुंचा देता है, उसके लिए कोई दुश्मन नहीं रह जाता। भगवान ने गीता में भी कई जगह इस प्रकार के श्लोक का उन्होंने संकेत किया है कि जो व्यक्ति पूर्णता भक्ति की उच्चतर धरातल पर अपने को पहुंचा लेता है, उसके लिए कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं दिखता मेरे अलावा। भगवान के भक्ति के अलावा, भगवान के अलावा जो भक्ति में उत्कृष्ट व्यक्ति है, उसके लिए और कोई मूल्यवान वस्तु इस संसार की नहीं। भक्त के लिए सबसे कीमती है तो भगवान, इसलिए उनके लिए वो सारा प्रयास करता है। वो लोग भागवत के दसम स्कंद के 83 अध्याय के अंदर, कृष्ण सुदामा चरित्र के अंदर, सुत गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जो मन है, स वाग जया तस्य गूढ़ान ग्रीडिते करौच तत्कर्म करौश्च मनश्च अस्मरेत बसंतम स्त्री जंगमेशु। सुत गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि स वाग तस्य, उसकी ही बाड़ी बाड़ी है, जिस बाड़ी से हम भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं। स वाक्य जया तस्य गुणान ग्रीणित, भगवान के गुणों का वर्णन करता है, वही उसकी वाणी वास्तव में वाणी है, अन्यथा बकबक करने से कुछ फायदा नहीं है, अर्थात बंधन ही उत्पन्न होते हैं। करो च तत्कर्म करो, अगर तुम कर्म भी कर रहे हो, करो शब्द से एक दोनों हाथों के लिए है कि इस दो हाथ से जो हम कर्म करते हैं, करो एक क्रिया आगे दिए हैं कि उस इन दोनों हाथों से किया हुआ जो कर्म का फल है, वह केवल भगवान के चरणों में निवेदित की जानी चाहिए। फिर मन का काम बताते हैं कि मनश्च, मन का एकमात्र काम क्या है, अस्मरेत बसंतम जंग येसु, जो महापुरुष या जो भगवान स्थिर और जंगम, स्थावर और जंगम सारे जीवों के अंदर वर्तमान रहते हैं, मौजूद रहते हैं, वसंतम बसे हुए हैं, उनके गुणों का स्मरण करता रहे, उनके गुणों का चिंतन करता रहे, वही मन सच्चा मन है। जिस मन के अंदर विभिन्न प्रकार की वासनाएं भरी हुई हैं, वो कहां से भगवान का स्मरण कर पाएगा। इससे आगे वाले श्लोक में कहते हैं कि शीरस्त तस्यो भलिलिंग मानये तदे वजत पश्यत तद्विचक्षु अंगानि विश्रो रथ तज्जनानां पादो दकमयानि भजन्त नित्यम्। सारे अंगों की उपस्थिति और बनने का कारण सुत गोस्वामी ने राजा परीक्षित से कह दिया, यह शीर बनाने का वास्तविक में मेरा उद्देश्य यह था कि इस शीर से मुझे प्रणाम करो। तदेव पश्यत, मैंने आंख इसलिए बनाया है कि मुझे ही केवल देखो। सारे अंगों की उपयोगिता भगवान ने अपने लिए बताया है भागवत के अंदर। अंगानि विश्वो रत्तज्जरानां पादोदकम् यानि भजन्ति नित्यम्। और जो कुछ भी तुम क्रियाकलाप कर रहे हो मुझे ही खुश करने का, पूजा का अर्थ यहाँ है इस श्लोक के अंदर खास करके भगवान यह कहते हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो मुझे ही प्रसन्न करने के लिए करो। ये चीज है और यही जब इस प्रकार की भावना हमारे अंदर कब आएगा, जब हम समता की स्थिति पर नहीं आते हैं तो यह भाव हमारे अंदर नहीं आएगा। मन ही हमारा बताया गया है एक अमृत बिंदु ग्रंथ है, उसके अंदर का एक श्लोक प्रभुपाद जी ने गीता के छठे अध्याय के तात्पर्य में उन्होंने कोट किया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षये बंधाय विषय मन मुक्तय निर्विषय मन। मन से बंधा जाता है और मन से ही छुड़ाया जा सकता है। अब इस श्लोक के संदर्भ में प्रभुपाद जी तात्पर्य क्या लिखते हैं पहले हम लोग अनुवाद को फिर एक बार पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस भाव भरी भंगिमा में प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं यह वाक्य। विचार कीजिए, आप लोग प्रसंग सुनते आ रहे हैं यह कथा कि किस भाव में प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को यहां कह रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं उस भाव को अपने हृदय से कि प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूढ़ हुए हैं। बताइए, जिस व्यक्ति के सामने सारे देवता कांपते हैं उस व्यक्ति को भर कोई कह दे आप जैसा ही मूढ़ व्यक्ति हुए थे। भूतकाल में कहा गया लेकिन वर्तमान अर्थ लिया जाता है कि आप जैसे ही बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने उन छह शत्रुओं को नहीं जीता, जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। ये मूड यह सोचकर गर्वित होते हैं कि मैंने तो दसों दिशाओं के सारे शत्रुओं को जीत लिया है, तुमने अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं जीत पाया तो बाहर के शत्रु को तो कैसे जीतेगा। घर का भेदिया लंका ढाहे, भोजपुरी में कहते हैं लोग कि घर के व्यक्ति अगर सारे घर की छिपी हुई भेद को दूसरे को बता देता है, दुश्मन को बता देता है, तो दुश्मन आसानी से वार कर सकता है अपने दुश्मन के ऊपर, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उसको मिल चुका है। जब हृदय ही हमारा खोखला है, मन ही हमारा स्थिर नहीं है, मन ही हमारे एकत्व को धारण नहीं किया है, अपने इष्ट देव की चरणों में नहीं लगा है, तो हम कहां से उनको खुश कर पाए। जिसका नींव ही कमजोर है वो तो बिल्डिंग बन कहां से पाएगा। जब हमारा मन ही कमजोर है तो हम भक्ति में टिक कहां से पाएगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन छह शत्रुओं पर विजयी होता है और सारे जीवों पर सब भाव रखता है तो उसके लिए शत्रु नहीं होते हैं। शत्रुओं की कल्पना मूर्खतावश की जाती है। मन से किसी को दुश्मन बना लिया जाता है, मान लिया जाता है कि इसने मेरा ये बिगाड़ा है, अपने कर्म, अपने किए हुए कर्म पर उसको ग्लानी नहीं होती, लेकिन यह वह यही सोचता है कि इसने मेरा बिगाड़ा है। अब प्रभुपाद जी के हृदय के भाव को हम लोग समझे, श्रील प्रभुपाद महाराज की। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य के अंदर कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने शत्रुओं को जीत लिया है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उसके शत्रु तो उसका अनियंत्रित मन तथा इंद्रियां हैं। भगवद गीता के अंदर आप लोग पढ़े होंगे कि तीन स्थान बताया गया है जहां हमारी सारी मन के विषय, शरीर के विषय और इंद्रिया के विषय स्थित होते हैं, क्योंकि इसके रहने के स्थान जो है इंद्रिया, मन और विषय का रहने का स्थान है, तो शरीर के तरफ ही संकेत किया गया कि यह शरीर ही है जिसके अंदर ये तीनों वास करते हैं। लेकिन उस शरीर को शारीरिक धरातल से ऊपर उठा करके कर्म किया जाता है तो हम मन द्वारा, वाणी द्वारा और शरीर द्वारा जो भी कर्म करते हैं उसका कर्म बंधन नहीं लगता। सबसे बड़ा शत्रु अपना मन और अपना इंद्रियां। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास बन चुका है। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का दास होता है, किंतु अज्ञानवश वह इसे भूल जाता है और इस तरह वह कामेच्छा, क्रोध, लोभ, प्रमत्तता तथा ईर्ष्या व माया की सेवा में लग जाता है। एक कवि ने लिखा है कि तीन ही सारे काम करते हैं, कृष्ण, राम, हरे, ये सारे काम को पूरा कर देते हैं, लेकिन अगर हमारा मन इन तीनों का नाम नहीं लेता है तो पता है माया क्या कहलाती है। तुम तब चार चीज बोलो, जब कृष्ण, राम, हरे नहीं बोलोगे तो चार चीज बोलो, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, माया यह बोलवाती है। और यह नहीं बोलोगे तो यह बोलो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अगर तीन नहीं बोलते तो चार चार बोलो। अगर हम तीन बोलेंगे ये तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जन्म और मृत्यु और जरा व्याधि ये नहीं आएगा। ये तीन सारे काम को पूरा कर देते हैं, कृष्ण, राम और हरे। लेकिन इसको हम बोले उस भाव से तब। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक नियमों के परिणामों पर आश्रित है, फिर भी वह अपने को स्वतंत्र समझता है और सोचता है कि उसने सारी दिशाएं जीत ली है। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके तमाम शत्रु हैं वह अज्ञानी है, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के भीतर के शत्रु अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। एक जगह अपने जब मेडिटेशन का जब क्लास दे रहे थे सुदामा प्रभु, तो बता रहे थे कि कृष्ण भावनामृत शब्द में से कृष्ण को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, मृत भावनामृत। हम लोग जीते हुए भी मरे के समान है। कृष्ण को नहीं सेंटर में लाते हैं तो हम मृत भावना वाले हैं। जब हमारी भावना ही मरी हुई है तो हम जी करके क्या करेंगे, मरे हुए ही कार्य करेंगे, गलत काम करेंगे। इसलिए इस मन को उस विषयों में व्यस्त रखिए, उन कर्मों में व्यस्त रखिए जहां से इसको समय न मिले कि संसार की तरफ मुड़ करके देखे। अन्य विद्वान कवियों ने लिखा है कि मन ही एक ऐसा विषय है जिसको रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, 24 घंटा काम करता है। शरीर हमारा भले सो जाता है लेकिन सोई हुई अवस्था में भी मन हमारा कुछ करता है, इसको रेस्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इतना व्यस्त रखिए कि उस तरफ न देखे। प्रहलाद जी आसुरी भाव को मापते हुए यह वाक्य बोल रहे हैं हिरण्यकश्यपु से कि आप इतने ऊपर धरातल पर अपने इस अहंकार को चढ़ा लिए हो, इतना बढ़ा लिए हो कि अब जब तक आप उतरोगे नहीं नीचे तब तक उस स्थिति में नहीं आओगे जिस तरह अभीत मैं हूं, जिस तरह मैं निर्भय हूं, उस भावना को आप प्राप्त नहीं करोगे। डर लग रहा था हिरण्यकश्यपु को भी कि इसके पास कुछ न कुछ ऐसा बल है जिसके बल पर यह इतना निर्भय होकर के बोल रहा, इतना डराने धमकाने के बाद भी प्रहलाद जी जब नहीं डरे तो उसको डाउट हो गया कि लगता है किसी न किसी का इसको बल मिल चुका है, नहीं तो जब लोकपाल कांपते हैं, दसों दिशाएं कांपती हैं, हिरण्यकश्यपु ही एक ऐसा राजा हुआ, भागवत के अंदर हम उसके चरित्र को पढ़ते हैं कि जब कहता था और जैसे कहता था तो प्रकृति को सब कुछ देना पड़ता था, इतना शक्तिशाली था यह असुर। बिना सीजन का अगर आम को कह दे कि आम दो तो उसको देना पड़ता था। इतना बड़ा चढ़ा असुर था लेकिन उस भाव में भरे हुए असुर के सामने केवल थोड़ी सी सहायता कृपा भगवान की विश्वास पर उन्होंने, प्रहलाद जी ने इतना अपने को निर्भय बना लिया है कि कंपाने वाले को भी अपने वाक्यों से कंपा रहे हैं, कुछ नहीं कर, ऐसा कार्य कोई भी प्रहलाद जी नहीं कर रहे हैं हिरण्यकश्यपु जिससे डर सके उनको, लेकिन इनके वाक्यों में ही हिरण्यकश्यपु डरा हुआ है कि कुछ बात है, कुछ खास है जिसके बल पर यह बोल रहा है। जिसके पास भगवान की कृपा रूपी बल है उस बल के सामने तो सबको झुकना ही पड़ेगा। दुर्वासा जी जैसे ऋषि जो दूब खाकर के जीते थे, अम्बरीश महाराज के सामने उनको झुकना पड़ा, किस बल पे? केवल भक्ति के बल पर। भक्ति की ही बल ऐसी है कि जो सबको झुका देती है। अरे जब हमारे सर्व शिरोमणि भगवान झुक जाते हैं भक्ति के सामने तो और ऐसा इस सृष्टि में कौन जीव है जो नहीं झुक सकता। जब भगवान अपने भक्ति के सामने अपने को झुका देते हैं, हम लोग भागवत का दशम स्कंध पढ़ते हैं जिसमें भगवान स्वयं उद्धव से कहते हैं गोपियों के भक्ति का वर्णन करते हुए कि उद्धव मैंने तो उसी से मैं प्रेम करता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मेरी एक कनिष्ठ भक्त गोपियां ही ऐसी हुई हैं जिनसे मैं प्रेम नहीं करने की भावना व्यक्त करता हूं लेकिन फिर भी वो मेरे से प्रेम करती। भगवान कहते हैं उस श्लोक के पीछे वाले श्लोक में के उद्धव इसलिए मैं चीर आयु बहुत लंबी उम्र धारण करने के बाद भी इन गोपियों के ऋण को मैं चुका नहीं पाऊंगा क्योंकि इनके पास प्रेम रूपी बल है जिसके बल में मैं बंध चुका हूं और इनसे बाहर मैं नहीं हो सकता। भक्ति का बल जिस भक्त के पास है भगवान अपने आप को उसको दे देते हैं और वो उस वक्त को किसी के सामने झुकना नहीं होता। यह भाव तभी आएगा जब हम लोग अपने मन को भगवान के कथनानुसार उस धरातल पर लाएं जिस मन में केवल कृष्ण हो। उठते बैठते सोते खाते पीते चलते हर समय जिनका मन कृष्ण चिंतन में लगा हुआ है, कृष्ण नाम में लगा हुआ है, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, वही उस मन को जीत पाते हैं। यहां प्रहलाद महाराज से, श्रोता भक्तों से, प्रभुपाद जी से और अपने आराध्य श्री राधा राधिका रमण जी कृष्ण बलराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यह भिक्षा चाहता हूं कि हम भी अपने मन को उस स्तर पर ला सके जिस मन से हम भगवान को अनवरत स्मरण कर सके। अगर इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की प्रार्थना रहेगी तो कृष्ण निश्चित रूप से उस भावना को देंगे, लेकिन प्रार्थना हम उस कातर भाव से करें तो। जैसे कल स्वर्गपति प्रभु जी बता रहे थे कि अंदर और बाहर एक होना चाहिए, और हम लोग उसी संप्रदाय में, भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे आचार्य हुए हमारे जो कहते थे वही करते थे, न फालतू बोलते थे ना और कुछ करते थे, तो कहतनी और करनी में उनके अंतर नहीं था। हम लोग प्रयास करें, प्रयास करेंगे तो कृष्ण निश्चित अनायास उसको पूरा करेंगे, लेकिन प्रयास तो करें, कपट भाव से नहीं। निश्चित कृष्ण पूरा करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद महाराज की।